नमस्कार एसबीएस हिंदी से, मैं हूं साहिल मकड़ और आज मेरे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के लॉ स्कूल में पीएचडी कैंडिडेट फैज़ा रहमान। फैज़ा और उनके कुछ साथी जो कि पब्लिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर्स हैं ने मिलकर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है। इनका यह रिसर्च पेपर हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हिजाब बैन फैसले पर आधारित है। फैज़ा और उनके साथियों को लगता है कि हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कुछ तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया है और अब वह यही तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य रखने से फैसला बदल भी सकता है। आइए बात करते हैं फैज़ा रहमान से, लेकिन आपको यह भी बता दें कि फैज़ा के यह विचार निजी हैं, इससे ना तो SBS हिंदी सहमत है और ना ही इनका मतभेद करता है। फैज़ा, आपका SBS हिंदी पर स्वागत है। फैज़ा, सबसे पहले हमें जजमेंट के बारे में बताइए।
तो फरवरी में कर्नाटका सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था, उसमें लिखा था कि कर्नाटका सरकार के अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे बच्चों को स्कूल का दिया गया हुआ यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा या ड्रेस कोड ही पहनना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ मुसलमान लड़कियां जो स्कूल के यूनिफॉर्म के अलावा हिजाब भी पहन के स्कूल आ रही थी, उनको स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर जाने से रोका गया। तो इसके बाद जो है कुछ हिजाबी लड़कियों ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक अर्जी दी कि कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है और स्कूल्स के जो ये एक्शंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हैं। और फिर एक लंबी सुनवाई हुई कर्नाटका हाई कोर्ट में और अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है अपना। और इस डिसीजन में कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर और स्कूल्स के सारे एक्शंस जो है वो सही है और लड़कियों की जो डिमांड है वो गलत है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि लड़कियों ने मांग आखिर क्या की थी। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनकी एक ही मांग थी कि जो चुन्नी जो है उनका यूनिफॉर्म का कलर की चुन्नी को वो अपने सर में लेके उसे ढांक सके क्लासरूम के अंदर। तो जो इसी को हिजाब कहते हैं, जिससे चेहरा खुला रहता है, बस वो यूनिफॉर्म की कलर की जो चुन्नी है वो उससे सर ढका रहता है। ये एक बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस है अमंगस्ट मुस्लिम वुमेन। तो किसी ने भी ये मांग नहीं की थी कि कोई यूनिफॉर्म होना ही नहीं चाहिए या स्कूलों का कोई अधिकार ही नहीं है कि वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सेट करे। बस यही मांग थी कि जो कलर का यूनिफॉर्म है उसी कलर की चुन्नी और हिजाब को वो सर में ढाक के क्लासरूम के अंदर बैठ सके। तो इसे जो है हम रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं लॉ में। और मुझे लगता है कि इतना सा रीजनेबल अकोमोडेशन जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे जरूरी मानता है। क्योंकि अगर हम देखें कि बाकी सब स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, जैसे आर्मी में भी मिलिट्री कलर का टर्बन जो है वो अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ, और आर्मी में तो बहुत डिसिप्लिन होता है, आर्मी में यूनिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्कूल से कई ज्यादा, स्कूल में भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है बट जितना आर्मी में रिक्वायरमेंट है वो कई ज्यादा है। पर हम देखते हैं कि वहां भी इस तरह का रिलीजियस अकोमोडेशन जो है, रीजनेबल अकोमोडेशन, वो अलाउड है और होना भी चाहिए। और अभी भी हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर ऑलरेडी लड़के और लड़कियां अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी अभी भी नहीं है। लड़कियों को सलवार कमीज या स्कर्ट्स पहनने की इजाजत है। तो फिर सिर्फ हिजाब के एडिशन से ही जो यूनिफॉर्मिटी का मूल है वो क्यों वायलेट होता है? क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हिजाब का वो ये है कि उससे यूनिफॉर्मिटी चली जाती है, उससे एक तरह का सोशल सेपरेटनेस आ जाता है क्लासरूम के अंदर। बट हमने ये आर्ग्यू किया है अपने ब्रीफ में कि ऑलरेडी स्कूल्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी काफी तरह के डिस्टिंक्शंस हैं, कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी अभी भी नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो सुबह टीका लगा के आते हैं या वो और कुछ रिलीजियस सिंबल्स अपनाते हैं या कड़े पहनते हैं, रिलीजियस धागे पहनते हैं, तावीज पहनते हैं, और टीचर्स भी सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र लगाते हैं, कुछ बच्चे क्रॉस पहन के आते हैं। तो ये रिलीजियस अकोमोडेशन जो है रीजनेबल लेवल पे, ये तो हिंदुस्तान की सोसाइटी का एक हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको एक्नॉलेज करता है।
जी फैज़ा, मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा था और उसमें कहा गया है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, तो इस पे आपका क्या कहना है?
एक तो हम देखते हैं कि पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में ही बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं जो काफी तादाद में आजकल हिजाब पहन रही हैं। वो हिजाब पहन के हर तरह के काम कर रही हैं। वो आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं हिजाब पहन के। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, जिनको हिजाब पर्दा का पार्ट लगता है। उनको लगता है कि जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन है पर्दा का, उसके लिए हिजाब करना पब्लिक स्पेसेस में इम्पोर्टेंट है। तो ये कोर्ट को ये देखना चाहिए कि उन लड़कियों की रिलीजियस बिलीफ क्या है। वैसे तो हर रिलीजन में कुछ लोग उसका पालन कर हर हर प्रैक्टिस को कुछ लोग उसका पालन करते हैं। कुछ महिलाएं सिंदूर पहनती हैं, कुछ कुछ महिलाएं नहीं पहनती हैं। तो जस्ट बिकॉज कुछ लोग उसका पालन नहीं करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी डिजर्व नहीं करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो कोर्ट को, मुझे लगता है कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि जो लड़कियां इसको फॉलो कर रही हैं, क्या वो जेन्युइन तौर पे ये बिलीव करती हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है और ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। ना कि ये देखना कि वेदर जनरली इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम।
जी, कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो कुरान में जो है हिजाब पहनना इज़ नॉट नेसेसरी, कुरान में जो है बुर्का पहनने की बात की गई है, लेकिन हिजाब से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है।
तो एक्चुअली ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है, ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टेस्ट है, क्योंकि ये इसके वजह से क्या होता है कि कोर्ट्स जो है वो क्लर्जी का काम करने लगते हैं, जो कि कोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं है। कोर्ट्स की ट्रेनिंग कुरान को इंटरप्रेट करने में नहीं है, कोर्ट्स की ट्रेनिंग है लॉ को इंटरप्रेट करने में। तो जब कोई भी कोर्ट इस तरह के कुरानिक पैसेजेस को सिलेक्टिवली उठाता है, बिकॉज और ये बोलना कि इस्लाम डॉक्ट्रिन एक यूनिफाइड डॉक्ट्रिन है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इस्लाम में भी बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, राइट? तो कुछ दैट्स व्हाई फॉर द कोर्ट टू गो इनटू समथिंग लाइक दिस, फॉर द कोर्ट टू इवन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्या नई प्रैक्टिस है, इस्लामिक थियोलॉजी के अंडर क्या है, द कोर्ट इज नॉट वेल प्लेस्ड। इवन आई एम नॉट वेल प्लेस्ड। व्हाट द कोर्ट शुड डू इज टू सी कि व्हाट डू द गर्ल्स बिलीव, वो लड़कियां क्या मानती हैं, उनका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या है, उनको क्या लगता है कि ये इस्लामिक प्रैक्टिस है, और अगर वो है तो फिर वो प्रोटेक्टेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
पर देखिए फिजा, मैं यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ डेविल्स एडवोकेट। कोर्ट तो उन्हीं बातों को महत्व देगी जो उनके सामने एविडेंस के तौर पे आएगा। एविडेंस के तौर पे अगर उनको दिखाई उनको बताया जाता है कि कुरान में इस प्रैक्टिस के बारे में नहीं कहा गया है, तो कोर्ट उसको असेंशियल प्रैक्टिस नहीं मानेगी। कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस के ऊपर चलती है।
इसीलिए मैं वो कह रही हूँ कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन ही है, वो अनफॉर्चुनेटली कर्नाटका हाई कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन है, ये टेस्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट ये टेस्ट जो है ये फिलहाल भी सुप्रीम कोर्ट खुद रियलाइज कर रही है कि इस टेस्ट में काफी प्रॉब्लम्स है। तो कोर्ट फिलहाल खुद ही इस डॉक्ट्रिन को रिव्यू कर रही है।
तो फिजा, आपके और आपके साथियों ने जो रिसर्च किया है उसमें क्या निकला है, और अब उस रिसर्च का आप क्या करना चाहते हैं?
तो हमने हमने एक डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे हमने आर्ग्यू किया है कि हिजाब पर जो प्रोहिबिशन कर्नाटका गवर्नमेंट ने लगाया था विद इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, वो एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है, और वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी खिलाफ है। तो हमने ये डिटेल एनालिसिस पब्लिक डोमेन में डाला है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ चीजें जो है, जो सर कर्नाटका हाई कोर्ट ने नहीं एम्फेसाइज किया था, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी और इक्वालिटी, बहुत ही समरली डिसमिस कर दिया था कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट्स उनके बारे में। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे इस पर ध्यान दिया जाएगा, रीजनेबल अकोमोडेशन जो आर्ग्यूमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म की यूनिक परिभाषा है, जो प्लुरालिटी और डाइवर्सिटी को अपहोल्ड करती है, उसको भी ध्यान में दिया जाएगा, और इस बार जो है डिसीजन वो मुसलमान लड़कियों के फेवर में आएगा।
जी फैज़ा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अपने श्रोताओं को यह भी बता दें कि यह विचार फैज़ा के निजी विचार हैं। इससे SBS हिंदी ना तो सहमत है और ना ही हमारा कोई मतभेद है। फैज़ा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। थैंक यू सर।